ओम शांति। तो बाबा का पहला लेसन हमारे लिए था कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। और लास्ट हमारी सफलता इसमें होंगी जो हम निराकारी रहेंगे। इसलिए निराकारी रहने का अभ्यास हमें निरंतर करना है। सिर्फ आत्मा समझना काफी नहीं है, पर अपने आप को आत्मा समझ शरीर को बिल्कुल भूल जाए, यह अभ्यास कर्म करके, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते करते रहना है। और अंत में शरीर के संबंधी या कोई भी व्यक्ति हमें याद ना आए, ये पक्का रखना है। और अभी बाबा ने कहा था निरंकारी और निराकारी का बहुत कनेक्शन है। निराकारी रहेंगे तो निरंकारी रहेंगे, निरंकारी रहेंगे तो निराकारी रहेंगे। और अहंकार, ये एक बड़ा गुप्त और बड़ा मुश्किल विकार है जो जल्दी छूटता नहीं। जो अहंकारी है उसमें मैंपन, मैं ऊंच कुल का हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं धनवान हूं, मैं मैनेजर हूं, पोजीशन का नशा होगा, कुल का नशा होगा, धन दौलत का नशा होगा। तो उनको अपनी बढ़ाई करने का आदत होंगे, मैं बड़ा हूं, और दूसरों का अपमान करेगा कि मैं समझदार हूं तुम बेसमझ हो। तो इसलिए दूसरों को वो रिस्पेक्ट नहीं देगा और अपनी कमियां जानते हुए भी कोशिश करेगा बाहर से दूसरा अंदर दूसरा। ऑनेस्ट नहीं होगा। और अपने लिए ही सब कुछ करता होगा, नाजुक होगा, दूसरों का ख्याल नहीं करेगा, पर खुद यदि किसी ने कुछ क्रिटिसाइज किया या फौरन उसको दुख लग जाएगा। और साथ में बासी होगा, अपनी चलाएगा, मैं जो कहूँ वही ठीक है, और दूसरे की टीका करेगा, हंसी उड़ाएगा, टोंट मारेगा, और खुद को असुरक्षित समझेगा। और हमेशा मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते, मैं जितना अच्छा भाषण करूंगा आप नहीं कर सकते, तो खुद को ही आगे रखेगा। और हमने देखा है ईगो वाले, हमारे एक भाई ने दादी का भी अपमान किया था उधर सभा में टीचर्स के सामने, कि आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं, समाज को क्या जानते हो, दुनिया को क्या जानते हैं, यहीं रहते हैं ना, मतलब किसी का भी अपमान किसी के भी सामने कर सकते हैं ये लोग। परंतु सबसे पहला विकार है जो हमें निर्विकारी बनने हैं, तो सबसे पहला विकार है, सब विकारों की जड़ है देहभान। वो छोड़कर देही अभिमानी बनना है, ईगो छोड़कर निर्माण बनना है, नम्रता धारण करनी है। तो जो देहभान वाले हैं वो उसका चिन्ह है कि उसको जैसे अपने ऊपर दया आती है, मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे कोई चांस नहीं देता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, और सभा के सामने आयते के सामने जब उसको बोलना होता है नर्वस हो जाता है। बाह्यमुखी जहां भी जाएगा तो देखेंगे कैसा फर्नीचर है, कैसा डेकोरेशन है, कितना बड़ा हॉल है आदि आदि, अंतर्मुखी नहीं है। और कोशिश करेगा कि और उनके तरफ आकर्षण हो, मतलब बोलना चलना एक्टिंग करना ड्रेस पहनना ऐसा कि लोग कहें हाँ तुम्हारा ड्रेस तो बहुत अच्छा है। ना मान शान की चाहना रहती है और समय शक्ति धन अपने शरीर को श्रृंगारने में लगाते हैं। कोई कोई उसमें थोड़े उनका स्वभाव शाय होता है, शर्मीले होते हैं, उनको चिंता होती है, मैं करता हूँ तो चिंता होती है, और चाहता है जैसे समाज चलता है हम भी उसके साथ चले, नहीं तो हमारी निंदा होंगे। और हंसी मजाक उड़ाना, देखो चेहरा हर्षित होना चाहिए, ये गुण है हर्षित मुख पर, किसी के ऊपर हंसना जोक करना ये देहभान की निशानी है। और वो लोग क्या करते हैं, औरों को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश करते हैं। और आपको मालूम है आजकल तो फैशन है पतली कमर हो, तो इसलिए खान पान में बहुत डाइटिंग करना, एक्सरसाइज करना, वजन करना, माप करना यहाँ यहाँ कि हमारा वजन या कमर मोटी ना हो। और इतने तक के जो मोटे होते हैं वो ऑपरेशन भी आज कर करते हैं, फैट निकाल देते हैं। बेचारों से डाइटिंग से नहीं वजन कमी होता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। और कई बार तो हमारे पास एक बहन थी ऑस्ट्रेलिया में, डांसर थी, बैले डांसर, तो उसके टीचर कहते थे आपका वजन बिल्कुल बदना नहीं चाहिए। अभी बेचारे को भूख लगती है, खाती तो है, तो नेचुरली खाएंगे तो वजन भी बढ़े बंगाड़े, परंतु वो क्या करती थी, खा के अंगुली डाल के उल्टी कर लेती थी कि वजन नहीं बढ़े। और जो देहभान में है उनको पदचिंतन करने में, जर्मुई जंगमुई करने में भी काफी इंटरेस्ट रहता है। फिर सबसे बड़ा विकार बाबा कहते हैं काम विकार, काम महाशत्रु है। तो जो सूक्ष्म रूप है, क्योंकि स्थूल रीति से तो काम विकार को जीत लेते हैं, पर सूक्ष्म रूप है प्रभावित होना, किसी से, किसी की ब्यूटी से, हेल्थ से, किसी के पर्सनालिटी से प्रभावित होना, इतने तक कि अलौकिक में भी। हाँ, वो बहन ने जब योग कराती है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो जैसे उड़ जाते हूँ, भूल जाते हैं कि वो शक्ति देने वाला बाबा है, उस बहन की महिमा करते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं, या उसका भाषण ऐसा है फर्स्ट क्लास, ज्ञान देने वाला ज्ञानदाता की महिमा करने बजाय उसकी महिमा करते हैं। आकर्षण होना, ये भी देखा गया है कि कई है जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, चाहे व्यक्ति है, चाहे वैभव है, चाहे कार है, मोटर बाइक है, कैमरा है, कंप्यूटर है, आकर्षित होना। और फिर कामना रहती है, इच्छा रहती है, हमारे पास होना चाहिए, इसका मकान बहुत अच्छा है, हमारे पास ऐसा होना चाहिए या इससे भी बढ़िया होना चाहिए। फिर है फैमिलियरिटी, सारा दिन एक व्यक्ति से हाल चाल पूछना, समाचार देना, बोल चाल करना, बस एक ही व्यक्ति से साथ। हम कहते हैं बाबा हमारा फ्रेंड है, तो व्यक्ति के साथ क्यों इतना लेन देन, सुख दुख की बात तो हमको बाबा से करनी चाहिए, व्यक्ति से थोड़ी करनी चाहिए। और इधर उधर की बातें भी करते रहेंगे, इसने ये किया है, ऐसा है, वैसा है, सारा दिन ये फैमिलियरिटी हो गए। फिर नाम रूप का प्यार, विशेष पति पत्नी एक दो के नाम रूप को याद करते रहेंगे, सबके पास उसकी महिमा करते रहेंगे, मेरा पति तो ऐसा है, मेरा पति तो ऐसा है, उसने तो ये कहा, ये किया, वो किया, या पति अपनी पत्नी के बारे में सबके सामने महिमा करते रहेंगे। तो नेचुरली है, जिसकी बात करते हैं उसका नाम भी लेंगे और उसका रूप भी सामने आएगा। तो सारा दिन बाबा को याद करने के बजाय उस व्यक्ति का नाम रूप को याद करते हैं। तो ये देखना है कि ये सूक्ष्म विकार भी ना हो, संपूर्ण निर्विकारी, विकार का अंश ना हो, क्योंकि अंश भी रहेगा तो अंश बढ़ जाएगा। और लास्ट पेपर में फेल हो जाएंगे। आप लोगों का मास्क घड़ी घड़ी उतर जाता है, सामने बैठकर मास्क नहीं पहनना है, ऊपर जाओ। बहन जी समझती है, फिर मुंह की रग भी बहुत गहरी है। मुंह में क्या है, एक दो के ऊपर आधारित हो जाते हैं, उसका सहारा लेते हैं, मेरा। और मेरा कहने से फिर क्या होता है, अपेक्षा होती है कि तुम्हारा काम है ये करना है। मेरी पत्नी है, मुझे गरम गरम रोटी देनी है, ये टाइम में ये देना है, ये टाइम ये करना है, ये करना है, मेरा बच्चा है, मेरी इच्छा है तुमको डॉक्टर बनना है, बस वही करना है। तो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों पर फोर्स लगाते हैं कि ये ही करना है। तो अपनी अथॉरिटी चलाते हैं, और एक तरफ उसकी तरफ लेते हैं, उसको फेवर करते हैं। समझो आज चार बच्चे होंगे माँ के, पर एक जरा ज्यादा उसमें मोह होगा ना, तो पहले सब खाना उसके लिए निकाल देंगे, अच्छा कपड़ा उसके लिए लाएंगे, तो उसको सब पहले देंगे। हमारे पास एक बात थी, जैसे नहीं मोह होता है तो क्या होता है, बच्चों को विदेश तो भेजते हैं पढ़ने के लिए, पर रोना एयरपोर्ट पर देखो, इतने रोते हैं, क्योंकि मोह है तो सेपरेशन होता है, वो अच्छा नहीं लगता है। जाता है बच्चा बड़ी पढ़ाई करने के लिए, तो एक तरफ तो नशा रहता है और दूसरी तरफ रोते रहते हैं। तो माता कहे, मेरे बच्चे को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, अब वो अमेरिका गया, उसको कौन जलेबी खिलाएगा, मैं भी जलेबी नहीं खाती अभी। तो क्या है, मुंह में रोना आता है और दुख होता है जो सेपरेशन होता है। तो इसलिए बाबा को हम कहते हैं बाबा से सर्व संबंध बांधो, बाबा का एक सहारा लो, एक बल, एक भरोसा। यदि बाबा के साथ होगा तो दूसरे व्यक्तियों में मोह नहीं रहेगा, उनके ऊपर हम आधारित नहीं होंगे। प्यार भल हो, जिम्मेवारी भल निभाओ, परंतु मेरा नहीं बाबा का बच्चा है समझ कर करो। फिर आता है लोभ। लोभी होता है वो कभी संतुष्ट नहीं, लोभ को थोब नहीं, चाहिए चाहिए, कितना भी होगा और भी चाहिए। सो लोभ कोई किसी भी चीज का हो सकता है, कपड़ों का हो सकता है, गहनों का हो सकता है, खाने पीने का होता है, घूमने का हो सकता है। और जो लोभी होते हैं ना वो स्वार्थी होते हैं और मनहूस होते हैं। जब दान देने का आएगा ना तो थोड़ा भी देंगे, समझेंगे मैंने तो बहुत कर लिया। और उसके मन पसंद की चीज बनी है तो ज्यादा डबल खा लेंगे, और मन पसंद की चीज नहीं है तो कहेंगे आज तो मुझे भूख नहीं है। उनके कबट भरे पड़े होंगे, नया खरीदते जाते हैं, पुराना भी पड़ा रहता है। परंतु बाबा हमें अविनाशी खजाना देता है। सत्युग में हमें इतने अच्छे अच्छे ड्रेस मिलेंगे, रोज ड्रेस बदली करेंगे। यहाँ के कलयुगी ड्रेस क्या है उसके हिसाब में। सत्युग में हमारे दरवाजे पर विमान खड़े होंगे, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू की कार क्या है। सत्युग में 36 प्रकार का खाना मिलेगा। जब ये बुद्धि में आएगा कि कल हमें बाबा क्या देते हैं, तो आज की कलयुगी दुनिया की चीज उसमें भेंट में कुछ भी नहीं, तो लोभ क्यों रहेगा। आप पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रहा। तो यहां ही इच्छा मात्रम अविद्या रहे। फिर है गुस्सा, क्रोध। क्रोध स्थूल रूप में तो मारपीट करना ये हो जाता है, परंतु सूक्ष्म रूप में चिड़चिड़ापन, अपसेट हो जाना, दलीलबाजी करना। और क्रोध का कारण है सहन शक्ति की कमी, धैर्यता की कमी, स्नेह की कमी, कई बार फोर्सफुल ऐसे ऐसे करके बात करेंगे। या वो बच्चा है ना, उसको खिलौना ना मिला, उसको चाहिए, वो पांव धरती पर पछाड़ेगा। और कई है वो क्या कहेंगे क्रोध में, मैं नहीं जानता हूं, तुमको जो करना है करो। मतलब उनको सहयोग नहीं देंगे, उसको जवाब नहीं देंगे। और कोई तो क्या करेंगे, क्रोधी के सामने आंख भी नहीं मिला सकेंगे। वो सामने आता है ना, वो यहां से आता है तो यहाँ से चले जाएंगे, सामने देखेंगे तो ओम शांति हेलो नमस्ते कुछ कहना पड़े ना, तो जैसे देखा ही नहीं दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो जितना जितना हम सहनशीलता, धीरज और रूहानी स्नेह धारण करेंगे तो क्रोध नहीं आएगा। और क्रोध आए तो क्या करना है, उसी समय रिएक्ट नहीं करना है, उस समय शांति में बैठ जाओ, योग में बैठ जाओ और धीरे से जब मन शांत हो तब बात करो। फिर है अलबेलापन, देखो हमारा समय शक्ति संकल्प संबंध संपर्क सब कितना वैल्यूएबल है, पर अलबेले है उसको व्यर्थ गवाते हैं। और फिर कई बार तो अलबेले लोग कहेंगे कुछ नुकसान हो गया, फिर कहेंगे ड्रामा। तो समझो ड्रामा का बहाना दे देते हैं, ऑर्गेनाइज ठीक नहीं करते हैं और भूल जाते हैं, फिर बहानेबाजी करते हैं और कई चीज पड़ी है परंतु धन की वैल्यू नहीं है, धन को अपना समझते हैं, बस अच्छी चीज देखी खरीद ली। और फिर बहाना क्या करेंगे, मैंने समझा के ये लोग कर लेंगे, तो समझो मैंने समझा हो जाएगा, खुद करते नहीं। फिर है आलस्य, जो आलसी होता है ना वो बहाना क्या कहता है, थक गया हूं दूसरा कोई कर लेना, और उसको आराम पसंद है, उमंग उत्साह नहीं है, तो इसलिए जिम्मेवार नहीं, तो इसलिए हमारा भाग्य बनाना है, हमें उमंग उत्साह से सेवा करनी है। यदि दूसरे के ऊपर छोड़ेंगे उसका भाग्य बनेगा, मेरा तो नहीं बनेगा। तो इसलिए दूसरे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मैं कर लूं तो मेरा भाग्य बनेगा। फिर है ईर्ष्या, जब स्वमान की कमी है तो ईर्ष्या होती है कि उसको सब मान देते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो क्या है कि आजकल ये कंपैरिजन करने की आदत है, एक दो की भेंट करने की आदत है, और यदि अपने में कुछ कमी है तो हीनता का भाव रहता है। परंतु हमें अपनी विशेषता देखनी है और वो विशेषता को बाबा की सेवा में लगाना है तो हमारा भाग्य बनेगा। तो ईर्ष्या वाले हैं वो अपने को असुरक्षित समझते हैं, इनसिक्योर समझते हैं, दादी हमेशा कहती है, रामायण क्यों बना? ईर्ष्या के कारण। कई कई को इच्छा थी कि मेरा बेटा राज्य करे, राम नहीं आवे गद्दी पर, तो ईर्ष्या के कारण राम को वनवास भेजा, सीता चुराई गई और सारी रामायण बन गई। तो ईर्ष्या के कारण लंबी चौड़ी कई कथाएं बन गई। और फाइनल दसवां विकार है नफरत, वैर आदि। तो जब वैर भाव है तो हिंसा भाव पहले तो आता है, और दूसरा बदला लेने की भावना रहती है। पर बाबा कहते हैं, बदला नहीं लो, बदल करके दिखाओ। जो हमारी निंदा करे वो हमारा मित्र, गाली देने वाले को गले में लगाओ। और ये जो वैर भाव वाला है ना, वो क्या करेगा, कोई ऊपर जाता है ना, उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, उसको ऊपर नहीं जाने देंगे। और कोई उसकी महिमा करेगा, कहेगा तुमको क्या मालूम, इसमें तो ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है करके गलत गलत बातें फैलाएंगा। तो इसलिए हमें देखना है कि हमारे में जितना रूहानी प्यार होगा, नफरत के बजाय शुभ भावना शुभकामना रखेंगे। तो इसलिए ये देखना है कि हमें अपने आप को अंतर्मुख होकर देखना है कि हमारे में क्या अवगुण है, उसको निकालने के लिए योग तपस्या जरूरी है। और दृढ़ता, मुझे ये छोड़ना ही है। तो कल विजयादशमी के दिन आप सभी ने कुछ न कुछ छोड़ने की प्रतिज्ञा की होंगी, और कुछ न कुछ धारण करना भी है, क्योंकि मधुबन में आकर शक्तियां और गुण भर के जाना है, और अपनी कमी कमजोरी विकार सब छोड़ के जाना है। तो ये जितना लक्ष्य रखेंगे तो ये यज्ञ में आप अपना कमी कमजोरी विकार दान में दे के जाना, साथ में नहीं ले जाना। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा लक्ष्य है कि हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है, वो हम बन सकेंगे। ओम शांति।